नई पीढ़ी का दोष नहीं, टेलीविजन का भी दोष नहीं है, क्योंकि बचपन से माँ ने मंदिर आना सिखाया, उसको द्रव्य चढ़ाना सिखाया, सिर झुकाना सिखाया, माँ ने कहीं बेईमानी नहीं की है। लेकिन मंदिर आकर उन्होंने जिन लोगों को देखा है यहां पर कि ये कैसे ढोंगी बाबा है, कैसे पोंगा पंडित है यहां आने वाले लोग, जो यहां आकर के धर्म के नाम पर जो कुछ करते हैं सो करते हैं, और बाहर जाकर के किसी गरीब का खून चूसने में कभी पीछे नहीं झटते। जब दुकान पर कोई भोला ग्राहक आ जाता है, उनके मन में जो वाक्य आता है वो शायद एक शरीफ मुसलमान के मन में भी नहीं आ सकता। उसके मन में ये भाव आता है, अच्छा मुर्गा फंसा। ये शब्द भी कल्पनातीत है, किसी जैनी की कल्पना में भी ये शब्द नहीं आने चाहिए, मुर्गा फंसा। ये क्या, कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? आज अच्छा मुर्गा फंसा, ये भाषा है क्या? अहिंसक की भाषा है? तो ऐसे लोगों को देखकर नई पीढ़ी मंदिर से विमुख हो गई। नई पीढ़ी का कोई दोष नहीं है, जो है सो है, उसको छोड़ो आप, लेकिन असली दोष किसका? अगर यहां पर अच्छे लोग आने लग जाएं, तो फिर उनको भी लगेगा कि कहीं तो अच्छा ही है। उनको जब यहां भी अच्छा ही नहीं मिलती, तो फिर वो व्यसनों की तरफ जाते हैं। किसका दोष है? जिनेंद्र वर्णी जी का वो प्रवचन पढ़ लेना आप, नास्तिकता क्यों, एक पुस्तक है आध्यात्मिक लेखमाला, उसमें शायद पहले नंबर का प्रवचन है, वो पढ़ लेना आप, नास्तिकता क्यों। और फिर अपना आप सुधार कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए मंदिर में क्यों आप छल कर रहे हैं। मंदिर में आप भगवान के भक्त बनकर के आइए, यहां पर आप बनकर के मत आइए, यहां मिट करके आइए। जहां चप्पल को उतारा, वहां अपने अहंकार को भी उतार करके आ जाइए, फिर देखिए मंदिर में आपको वो अमृत प्राप्त हो सकता है जो देवों को भी दुर्लभ है। आप विष लेकर के मंदिर आते हैं, इसलिए आपका हित नहीं होता। किसी व्यक्ति से नहीं कह रहे हम, आप इस बात को समझ रहे होंगे। जिसके अंदर वैसी कमी है, उसको अपनी कमी दूर करना, बाकी दूसरे को नहीं सुधारना। आप ये मत देखो कि फलाना व्यक्ति ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, कुछ नहीं, अपने को सुधार लो बस। एक एक जन सुधरने का संकल्प ले ले तो पूरी समाज सुधर जाए, इसमें कोई दो मत नहीं। सब ये चाहते हैं कि समाज सुधरे, लेकिन खुद कौन सुधरना चाहता है? इसलिए आज तक समाज नहीं सुधरे, अनादिकाल से आज तक, आदिनाथ भगवान के समय भी मारीच बैठा था उनके अपोजिशन, और आज भी ऐसे न जाने कितने मारीच हैं। राम के समय भी सीता को घर से निकलवाने वाले लोग तैयार थे, राम राज्य में भी ऐसा अनर्थ हो गया। फिर आज कलयुग में आप क्या अपेक्षा रखते हो दुनिया से? अपने को सुधार लो तो कुछ आगे रास्ता बने। फिर आचार्य कहते हैं कि कोई बिरला सम्यक दृष्टि जीव व्रतों को धारण करके पुण्य कमाता है, शांत रखता अपने भावों को और अपने दोषों की निंदा करता है, और गुरु के सामने बोलता है कि गुरुवर मैं क्रोधी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैं कपटी हूं, मैं लालची हूं। गुरु के सामने जाकर ईमानदारी से अपनी कमियां प्रकट कर देता है कोई बिरला व्रती सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन जिसके पल्ले में पुण्य है, उसके जीवन में भी इष्ट वियोग और अनिष्ट का संयोग हो जाता है। सारी सुविधाएं हैं, सुविधा होना अलग बात है, लेकिन सुख और सुविधा दो अलग वस्तुएं हैं। सुख और दुख अपने हाथ में है, सुविधाएं पुण्य पर निर्भर करती हैं। अपन कषाय करते हैं तो सुख दुख होते हैं, और पुण्य का उदय होता है तो बाहरी सुविधाएं अपने को उपलब्ध हो पाती हैं। दृष्टांत दिया कि अभिमानी भरत चक्रवर्ती भी छोटे भाई से पराजित हो गया, कितना पुण्य था उसका। सर्वार्थ सिद्धि से आया हुआ जीव, अवधि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, और एक बात और, व्रति। भरत अव्रति नहीं, भरत व्रति था। तो भी ये दशा हो गई। सब पदार्थों का संयोग बड़े पुण्यशाली जीवों को भी हमेशा नहीं मिलता, और ऐसा पुण्य भी किसी के पास नहीं है कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सके। क्या चाहे वो चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, या कोई भी क्यों ना हो, ऐसा पुण्य किसी के पास नहीं है कि उसकी हर इच्छा पूरी होती हो। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने चाहा कि सातवां खंड जीत लो, छह खंड जीत चुका था लेकिन सातवां खंड था ही नहीं, तो कहां से ये इच्छा पूर्ण हो। किसी के पास पत्नी नहीं है, किसी के पास पत्नी है लेकिन पुत्र नहीं है, किसी के पास पत्नी भी है पुत्र भी है लेकिन शरीर में रोग है, किसी के पास निरोग शरीर है लेकिन धन संपत्ति नहीं है, किसी के पास धन धान्य है लेकिन आयु अल्प है। बताइए संसार की क्या दशा है। किसी के पास पत्नी है लेकिन खूंखार पत्नी है, मांसाहारी प्राणी जैसी, इंतजार में बैठी रहती बेलन लेकर, और किसी के पास व्यसनी पुत्र है, पत्नी ठीक है लेकिन पुत्र व्यसनी है, किसी का भाई शत्रु जैसा है, अदालत में केस चल रहा है भाइयों के बीच, और किसी की बेटी दुराचारिणी है, किसी की बेटी दुराचारिणी है, किसी के यहां अच्छा बेटा हुआ लेकिन मर गया, किसी को अच्छी पत्नी मिली लेकिन उसका हार्ट फेल हो गया, किसी का घर और कुटुंब अग्नि में भस्म हो गया, किसी का मकान भूकंप में समाप्त, 10 साल में मकान बना है और 10 सेकंड में धरती में समा गया। इस प्रकार मनुष्य जीवन में भी अनेक प्रकार के दुखों को सहता हुआ यह संसारी प्राणी अपना मन धर्म में नहीं लगाता, कैसी विडंबना है, और पैसे कमाने में ही सारा जीवन बर्बाद कर डालता है। आगे भी और वर्णन है, इसको अपन फिर देखेंगे। तो 56वीं गाथा में आचार्य कुमार कार्तिकेय मुनि कहते हैं, धनवान तो निर्धन बन जाता है और निर्धन धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है, राजा नौकर बन जाता है तो कभी नौकर राजा बन जाता है। ये संसार एक रंगमंच है जहां पात्र बदलते रहते हैं लेकिन नाटक वही चलता है। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु बन जाता है, और कर्म के फलस्वरूप बस ये परिवर्तन चलता रहता है। यही संसार का स्वभाव है, बदलते रहना बदलते रहना बदलते रहना। अब कभी देवगति में चला जाए तो वहां भी मानसिक दुख होता है दूसरे देवों का अधिक वैभव देख करके, कभी इष्ट वियोग संबंधी दुख भी हो जाता है। ललितांग देव, स्वयं प्रभा देवी, इनकी कथा पढ़ी हो आपने, तो जब ललितांग की आयु पूर्ण हो जाती है और स्वयं प्रभा जीवित रहती है तो अपने देव के वियोग में बहुत दुखी होती हूँ। तो देवगति में भी इष्ट वियोग का दुख हो सकता है, मानसिक दुख। और जिनके पास वैभव अधिक है उनको विषयों की तृष्णा से दुख होता है। और फिर आचार्य महाराज ने एक बड़े मर्म की बात बताई कि जिस सुख का आधार विषय है, यानी इंद्रियों की भोग सामग्री जिस सुख का कारण है, उससे तृप्ति कैसे मिल सकती है। मतलब पराधीन सुख कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, ये सिद्धांत हो गया। फिर आगे कहते हैं कि अपने को लगता है कि शरीर का दुख बहुत भयंकर होता है, देवों को तो सब शारीरिक अनुकूलताएं हैं, उनको क्या तकलीफ होती होगी, देवी चली गई या देव चला गया, बस मन में थोड़ा दुख होता है। आचार्य कहते हैं कि नहीं, शरीर के दुख से कई गुना अधिक मन का दुख होता है। वो इस मनुष्य जीवन में भी बहुत लोग इस बात का अनुभव कर लेते हैं कि शरीर में तकलीफ हो तो एक बार सहन हो जाए, लेकिन अगर मन की तकलीफ हो तो उसको सहना बहुत भारी होता है। और मानसिक दुख से जो पीड़ित है उसको बाहर के सुख भी सुखकारी नहीं होते। मिठाइयाँ खा रहा हो कोई और समाचार मिल जाए मोबाइल पर कि भाई तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो दो चीज़ें हैं उसके ज्ञान में, एक तो रसना इंद्रिय से उस मिठाई का मीठा रस ज्ञान में आ रहा है, और दूसरी तरफ कानों से जो मोबाइल में सुना है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब कहाँ का सुख रहा उसके पास, हो ही नहीं सकता। तो विषय भी दुखदायी हो जाते, उसको लगता है कि कहाँ मैं मिठाई खा रहा हूँ और फिर लड़के का एक्सीडेंट हो गया, ये मिठाई ही मेरे लिए अपशकुन है, निकाल के फेंक देगा वो गले के नीचे ले जाना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्थिति बिगड़ती है। और मनोहर विषयों के द्वारा जो देवों के लिए सुख होता है, आचार्य कहते हैं कि विषयों के निमित्त से होने वाला सुख नियम से दुख का ही कारण बनता है। वर्तमान काल में बने ना बने, लेकिन भविष्य में उसका परिणाम जो होगा वो दुख ही होगा। विषयों से होने वाला सुख दुख का ही कारण होता है। यहां सुनते समय तो सारी बातें आती है दिमाग में, लेकिन जब विषय सामने आते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि नहीं, इसमें है तो सही सुख। सुन रहे थे शास्त्र में, जिनवाणी में भी गलत नहीं लिखा होगा, लेकिन अभी जो ये मुझे अनुभव हो रहा है तो सही इसमें कुछ ना कुछ। या फिर कभी ऐसा भी लग सकता है कि मेरी कमजोरी है, मैं मेरे बस का नहीं है इनका त्याग, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, अभी तो मुझे इसमें सुख आ रहा है। इस प्रकार अत्यंत असार दुखों के सागर स्वरूप घोर संसार में विचार करके देखो, क्या वास्तव में कहीं भी सुख है। 62वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि अत्यंत असार दुखों के सागर स्वरूप घोर संसार में विचार करने पर आप बताइए सुख है क्या कहीं भी। और इस पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा दी, सपरम बाधा सह्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषयम विषमम जम इंदिये ही लद्धम तम सौखम दुखमेव तहा। आचार्य कहते हैं कि इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख पांच कारणों से सुख नहीं, सुखाभास है, दुख है। कैसे? तो एक तो वो पराधीन होता है, इंद्रियों का सुख नियम से पराधीन होता है। टीवी देख रहे हैं, बिजली चली जाए, गायब, पूरा अंधेरा, वो इंद्रिय सुख था, पराधीन था, बिजली के आश्रित था। ये फिर आंख में कुछ आ जाए तो क्या करोगे आप, वहां से उठना पड़ेगा आपको, पानी वानी डालकर आंख साफ करोगे फिर बैठोगे। खैर ये तो दूसरा विशेषण हो जाएगा, लेकिन पराधीन है, प्रकाश आदि बहुत सारे बाह्य साधन उसमें अपेक्षित होते हैं। और अपना शरीर भी ठीक हो तब वो सुख सुख लगता है, शरीर काम करना बंद कर दे तो फिर क्या होगा, आंखों से नहीं दिख रहा है तो फिर टीवी के सामने बैठो या फिर और कहीं बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पराधीन है इंद्रिय सुख, और फिर बाधा सहित है, कई बाधाएं अड़चने विघ्न आते रहते हैं। जैसे बिजली चली गई, ये एक बाधा हो गई। आंख में कचरा पड़ गया, ये एक बाधा हो गई। या किसी ने बुला लिया बाहर से, आवाज आई बाहर, साहब तो चले गए, जैन साहब बाहर चले गए, और यहां जो सुख मिल रहा था टूट गया उसका। विच्छिन्नम, और अगर बाधा नहीं भी आती तो भी उस सुख की कड़ी कहीं ना कहीं जाकर के टूट जाती है, सदा नहीं चलता वो सुख, अपने आप समाप्त हो जाएगा वो, थोड़ी देर चलेगा फिर खत्म। एक संस्मरण हम सुनाते हैं अपना, बहुत पहले की बात है, रेडियो सुन रहे थे हम, और फिर रेडियो में बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटिव प्रोग्राम्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उसमें एक छोटी 5 मिनट की एक शॉर्ट स्टोरी कथा जैसी आती थी, तो उस कथा को सुन करके हमारा मन हट गया उससे। या फिर ऐसी कथाओं पर सेंसर लगा देना चाहिए, सब सेंसर बोर्ड जो है वो उसमें फिल्मों में काम करता है, लेकिन ऐसी कथाएं सुना करके जनता को क्यों पीड़ा पहुंचाते हैं लोग, ऐसा सोच करके हमने बंद कर दिया। अब सबके अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं। उस कथा में क्या था, बहुत ही ऐसा चित्रण किया उन्होंने कि एक पिता ने अपनी बेटी को मतलब गला दबा करके मार डाला। क्यों मार डाला, कि ये बड़ी होगी इसको कौन संभालेगा, क्योंकि मेरी पत्नी को कुछ लोग किडनैप करके ले गए हैं, तो अब जो बच्ची है मेरी उसको कौन पालेगा और फिर इसको कौन संभालेगा, तो उसने उसका वध कर डाला। अब पता नहीं इसमें क्या शिक्षा मिली जनता को, हो सकता है कोई ना कोई शिक्षा हो उसमें, हो सकता है, लेकिन इसको सुनने के बाद हमारा मन विमुख हो गया था उससे, कि ऐसी कहानियां बेकार की नहीं सुनना अपने, कोई अच्छी शिक्षाप्रद कथा हो तो फिर उसमें ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ मार कर खत्म कर दी स्टोरी। तो वैसे देखा जाए तो भारत की जो कथा परंपरा है उसमें अंत हमेशा सुखद होता है, और विदेशों में जो ट्रेजिक एंड होता है ये एक पद्धति है, पश्चिमी पद्धति है वो, कि जहां पर अंत बिल्कुल निराशाजनक और फिर पूरा अंधकार में। भारत में क्या होता है कि कथा के बीच में या शुरू में कुछ संकट वाली स्थितियां बनती है और अंत में एक सुखद उसका उपसंहार होता है, तो ऐसी कोई भी बात आ सकती है तो विच्छिन्न हो जाता है वो सुख, संसार का कोई भी सुख कर्णेन्द्रिय संबंधी हो। जैसे उदाहरण की है कि कोई आपका प्रशंसक है वो एक आध बार निंदा कर दे, कैसा लगता है, एकदम टूट गया ना वो सुख, प्रशंसा का जो सुख मिलता रहा आज तक, आज उसने एक बार निंदा कर दी गया काम से, उसने पहले जितनी प्रशंसा की थी सारी प्रशंसा, देखो पहले जो प्रशंसा की थी उससे एक डायरी भर सकती थी, और आज जो निंदा की उससे एक पेज नहीं भरने वाला, लेकिन फिर भी वो भारी हो गया, डायरी पानी में चली गई। तो ये स्थिति होती है सांसारिक सुख की, और बंध कारणम, बंधन का कारण है सांसारिक सुख, मनुष्य के मन को बांध लेता है, कर्मों का बंधन भी होता है उससे। और आखिरी विशेषण दिया कि संसार का सुख विषम होता है, विषम यानी एक समान नहीं चलता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। जैसे किसी को बहुत दिनों से बेसन के लड्डू खाने की इच्छा थी, बन के तैयार हो गया, और फिर उसकी मनह कामना के अनुरूप उसके सामने उसने जितने लड्डू मांगे उतने परोस दिए, 9 लड्डू परोस दिए उसकी थाली में। अब देखिए यहाँ पर एक ये दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, लेकिन इसमें जो मर्म है उसको पकड़ना है। क्या हुआ, पहले लड्डू में जो मज़ा आया क्या दूसरे में उतना ही मज़ा आया, तो क्या हो गया दूसरे में, शक्कर की कमी आ गई या घी कम हो गया या बेसन की क्वालिटी बदल गई, क्या हुआ, या गर्माहट कम हो गई, पहले वाला गर्मा गर्म था दूसरा थोड़ा ठंडा हो गया, ऐसा है। तीसरे में और नौवे में क्या हो गया, ये विषम का दृष्टांत है। संसार का सुख सम नहीं रहता, एक जैसा नहीं चलता, वो ग्राफ जो है ऐसे नीचे की तरफ आता है। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, वो तरुण सागर जी बोलते ना कि च्युइंगम खाओ तो एकदम मुंह में जैसे जाता है तो फिर बहुत मीठा लगता है, लेकिन 15-20 मिनट बाद चबाते जा रहे, लेकिन कोई उसमें रस। बस संसार का सुख भी वैसे ही, च्युइंगम में तो वास्तव में शक्कर कम हो जाती है क्योंकि मुंह से खींच लेते हैं अपन अंदर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कम नहीं हुआ है, वो यथावत उतनी ही शक्कर है। और आप कोई ऐसी व्यवस्था भी बना सकते हैं कि गर्माहट भी उतनी रह जाए, ठंडे भी ना हो लड्डू, ऐसी भी व्यवस्था हो सकती है। 9 लड्डू आप एक साथ मत परोसने दो, लाओ गर्म गर्म, एक साथ परोसने से ठंडे हो जाएंगे। तो अब फिर भी वो स्वाद जो शुरू में था अब नहीं आ रहा है। क्या रसना इंद्रिय में इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम हीनाधिक हो रहा है? तो ज्ञान में कुछ तारतम्य आ रहा है, फर्क पड़ रहा है, ऐसा लगता है आपको? या फिर ज्ञान तो बिल्कुल वैसा ही उद्घाटित है? 5 इंद्रियों का ज्ञान अपन जो क्षयोपशम लेकर के आए हैं वो बरकरार है, लेकिन ये 10-15 मिनट में इतना फर्क कैसे पड़ गया? शुद्धा वेदना बात अलग है, वो तो शुद्धा वेदना का शमन तो और किसी भी चीज से हो सकता है, यहां तो स्वाद प्रधान दृष्टांत है। लोलुपता कम हुई ऐसा अगर कहो तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि शाम को वो अकृत पुण्य की कथा याद है आपको, उसने सुबह भी खीर खाई उस दिन दोपहर में खाई, शाम को खाई और सुबह भी खाई अगले दिन, माने 3 बार खाई। तो मतलब स्वाद की आसक्ति तो कम नहीं है उसकी, लेकिन एक साथ विषयों का सेवन करते समय उसमें फर्क पड़ता जाता है। बस वो उसका स्वरूप है सांसारिक सुख का, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख का यही स्वभाव है कह लो, कि वो सुख स्थिर नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता। तो 5 विशेषताएं कौन सी हो गई इंद्रिय सुख की? पहला पराधीन है वो, दूसरा बाधा सहित है, तीसरा अपने आप विच्छिन्न होने वाला है, नश्वर है, विच्छिन्न का अर्थ नश्वर है। चौथी विशेषता बंधन का कारण है, और पंचम विशेषता है विषम है। तो आचार्य कुंदकुन स्वामी कहते तम सुखम दुखमेव तहा, इसीलिए वह सुख वास्तव में दुख ही है। जिसमें इतनी परेशानियां जुड़ी हो उसको विवेकी मनुष्य क्या सुख माने, बताओ? आचार्य कुंदकुन स्वामी तो कहते हैं कि वो दुख ही है। फिर उन्होंने ये भी दृष्टांत दिया कि अगर देवलोक सुखी होते तो फिर वो इन विषयों का सेवन नहीं करते, इंद्रियों की सुख सामग्री की ओर नहीं जाते, और सुख चाहना ही इस बात को सिद्ध करता है कि आप दुखी हैं। क्या जो चीज नहीं होती उसी को तो चाहता है व्यक्ति? आपके पास चश्मा है, आप चश्मा चाहोगे क्या, बताओ? तो सुख नहीं है इसलिए सुख चाहते हैं। तो देव भी इंद्रिय सुख का सेवन करते हैं, इसका मतलब उनके अंदर भी इच्छा है, और वस्तुतः इच्छा ही दुख है। और वर्णी जी वाला दृष्टांत आपके स्मरण में हो कि बहुत दिनों से किसी को कोई वस्तु चाहिए थी, अब काफी दिन लग गए उसको साधन जुटाने में, अंत में वो चीज आ गई, कोई डायनेमिक बूस्टर बास 3-in-1 या 4-in-1 कोई ऐसा सेट उसको चाहिए था, तो बड़े दिनों बाद सब साधन जुटाकर अब इंडिया में जो मिल रहा था वो उसको जम नहीं रहा था, तो फिर उसने कहीं से ऐसी चीज बुलवाई जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, और आ गई वो चीज। अब उसको जो सुख हो रहा है वो किसका सुख है? क्या उस चीज में से सुख की किरणें निकल रही है, बताइए, जो इसको छू रही हो और इसको सुखी कर रही हो? उसको एक दिन पहले समाचार भी मिलेगी, तुम्हारा वो जो तुमने ऑर्डर किया था वो कल पहुंचने वाला है। तो उसको वो सुनने के बाद कैसा लगा था? कुछ परसेंट सुख वहीं मिला था उसको, जबकि वो सामग्री अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर थी, क्योंकि कल पहुंचने वाली है। आज तो वो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से क्या उसमें से कुछ करंट आ गया? यहां सुख कहां से आया ये विचारने की बात है। इच्छा किस बात की है? कि वो चीज मुझे मिले। अब वो चीज जब मिलेगी तब की बात तब है, लेकिन अभी मिलने का आश्वासन मिल गया, आश्वासन मिलते ही इच्छा में कुछ राहत पहुंच गई। मैंने अब ये विश्वास हो गया कि इच्छा पूर्ण होने जा रही है। तो उस इच्छा के कारण मन दुखी था, वस्तु के अभाव में मन दुखी नहीं था। अभाव तो आज भी है, क्योंकि कल आने वाली है वस्तु। समझ में आ रही बात? अभाव आज भी है, लेकिन अभाव के कारण दुख था। अगर अभाव के कारण दुख होता तो फिर ये समाचार जो मिले कि कल आ रही है वो सामग्री, तो आपको कैसे सुख होने लगा थोड़ा थोड़ा? इसका मतलब दुख का कारण इच्छा थी और कल आ गया। कल आता है तो आज बन करके ही आता है, आज हो गया, अब वो सामग्री पहुंच गई आपके पास। वैसे पहुंचने के पहले थोड़ी बेचैनी बढ़ गई थी कि कब आ रही, कब आ रही। जब भी बेल बजता था तो फिर लगता था कि शायद आ गई, फिर पता चला है दूध वाला है। अंत में आ ही गई वो चीज, अब कैसे सुख मिला ये प्रश्न। आने के पहले वो आ जाए ये इच्छा थी, आने के बाद आ जाए वो इच्छा समाप्त। इच्छा समाप्त तो उस इच्छा के कारण उत्पन्न होने वाला दुख भी समाप्त, दुख समाप्त तो सुख, दुख गया सुख हुआ। सुख, अब जैसे कांटा लगा है पैर में, निकाल दो कैसा लगता है? तो जो चुभन का दुख था वो चला जाता है। उसी प्रकार इच्छा रूपी कांटा जो चुभ रहा था वो उसके आने पर बाहर हो गया, तो वो इच्छा के जाने का सुख है, वस्तु के आने का सुख नहीं है। कितनी बड़ी बात है, कितने रहस्य की बात है। सुख और दुख ये बाहर नहीं है, भीतर है। इच्छा करो तो दुख, इच्छा छोड़ दो तो सुख। लेकिन समस्या ये है कि वो इच्छा पूरी होती नहीं कि कोई दूसरी इच्छा चालू हो जाती है। बहुत भयंकर छलिया है अपना मन, एक इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती और दूसरी इच्छा आ जाती है। क्यों? कारण क्या है? दूसरी इच्छा आने का कारण क्या? कि वो चीज मिलने के बाद भी लगा कि तृप्ति नहीं हो रही है। सुख हुआ, क्षणिक सुख हुआ, इच्छा शांत हो गई तो क्षणिक सुख तो हुआ, लेकिन तृप्ति, जो सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, वो नहीं है। यहां है भी कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि हाँ इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी तृप्ति है, बड़ी संतुष्टि हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल जीवन का ये अभूतपूर्व क्षण है, ऐसा लगता है, लेकिन ये भी एक आभास है, सत्य नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर लगता है कि नहीं, जैसे जलाभास है वैसे ही लगता है, ये भी सुखाभास है। हिरण दौड़ता है पानी समझकर, प्यासा है, गर्मी का मौसम है, दौड़ता है, उसको दूर दूर पानी दिखाई देता है, दौड़ लगाकर जब वहाँ पास जाता है कुछ भी नहीं रहता, फिर सोचता है कि यहाँ तो पानी था, और दूर दृष्टि डालता है, अरे वो रहा पानी, वहाँ दृष्टि दौड़ लगाता है, ऐसा करते करते शाम हो जाती है, गला सूख जाता है, घुटने जमीन पर टिक जाते हैं, शक्ति जवाब दे देती है, प्राणांत हो जाता है। कितनी बार जीव इन इंद्रिय विषयों में मरा है, आज भी मर रहा है। ये विषय सुख ही वास्तव में विष है, बल्कि ज्ञानी जन कहते हैं कि ये विष से भी विषम है। विष एक बार मारता है, विषय अनंत बार मारते हैं। तो विष ज्यादा जहरीला या विषय? ये विषय ऐसे हैं कि इनके कारण मेरा विवेक नष्ट हो जाता है। मैं जानकार समझदार होता हुआ भी गलत दिशा में चला जाता हूं, सर्वघाती कषाय के वशीभूत हो जाता हूं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, लाचार हो जाता हूं।